भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
जन्मादि अस्यतः अन्यवत् इतरतस् च अभिज्ञस्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम् निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि रिपीट कर सकते हो भाई एंड दिस कांट बी रिपीटेड डेफिनेटली ओके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भागवतम का सार इस एक श्लोक में श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय और पहला श्लोक और ये हम सबको याद होना चाहिए एक्चुअली ये रिमेम्बर करना चाहिए क्योंकि ये श्लोक भगवान की डेफिनेशन दे रहा है भगवान कौन है नहीं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कोई पूछेगा भगवान कौन है तो आप ये कोट कर सकते हो और फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि भगवान की डेफिनेशन किसी के पास नहीं है वो केवल हमारे पास है वैष्णवों के पास अब किसी भी संस्था में चले जाओ क्रिश्चियनिटी इस्लाम या टाओइज्म जापान रिलीजन चाइनीज रिलीजन भगवान की डेफिनेशन किसी के पास नहीं अब किसी भी ढोंगी गुरु के पास चले जाओ अगर उनको हराना है तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो भगवान की डेफिनेशन की सीधा मेरे पास वो आया था राजपुरा में एक व्यक्ति आया था आर्ट ऑफ लिविंग वाला तो वो लोग वो ऐसी बात करने आया था तो अपना कह रहा था कि हम लोग अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं तो मैंने सोचा चलो ठीक है ठीक हो सकता है दैट्स ओके मगर ये मुझे बताओ कि भगवान की डेफिनेशन क्या है वो हक्का बक्का रह गया उसने भगवान की डेफिनेशन कभी उसको उसने क्वेश्चन ही नहीं सुना था क्योंकि जनरली लोग ढोंगी गुरु भगवान के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं भगवान एक सुपर पावर पावर है सब जगह है नहीं वो सोचने लगा कि ये क्या क्वेश्चन है तो हमारी यूनिकनेस ये है गौड़िया वैष्णव की हमारे वैष्णविज्म की चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की कि उन्होंने हमें हर चीज की परिभाषा दे दी है कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई हवा में चीजें नहीं लटकी हुई भगवान की डेफिनेशन क्या है हमारे पास भक्ति की डेफिनेशन क्या है वो परिभाषा क्या है वो भी हमारे पास प्रेम की परिभाषा क्या है वो भी है प्रेम की परिभाषा देना तो ऑलमोस्ट असंभव है भगवान की परिभाषा चलो और वैष्णवों के पास भी है मध्वा संप्रदाय श्री संप्रदाय निम्बाक संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय क्योंकि भागवतम में ही हम सब भागवतम तो पढ़ते ही हैं वो लोग भी भागवतम पढ़ते हैं मतलब प्रेम की परिभाषा तो केवल चैतन्य महाप्रभु ने दी है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोलोक से प्रेम लेके आए थे और पहले के चारों ने बोला था कि प्रेम प्रेम की चर्चा की है उन्होंने थोड़ी बहुत मगर ज्यादा चर्चा मोक्ष की है वैष्णव आचार्यों ने मगर महाप्रभु ने कहा फॉरगेट मोक्ष हम प्रेम की बात कर रहे हैं और पहले के आचार्यों ने प्रेम के बारे में थोड़ा बोला है मगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया महाप्रभु ने तो पूरी किताबी लिख डाली प्रेम पे अपने भक्तों के द्वारा रूपा गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसम सिंधु में प्रेम की परिभाषा है नहीं सो क्या है प्रेम की परिभाषा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृता में लिख रहे हैं प्रेम की परिभाषा कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम सो अपने अपने आप को आनंद देना वो काम वासना है भगवान की इंद्रियों को आनंद देना वो प्रेम है रूपा गोस्वामी प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं भक्ति रसमृत सिंधु में कि हृदयस्य मार्स्नेह ममत्व अतिशयांकितः भाव एव सांद्रनात्मा सप्रेम निकत्यते। कि प्रेम क्या है, रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं। ओके, व्हाट्स द डेफिनेशन, टेल मी, परिभाषा क्या है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रेम की परिभाषा है कि जब भाव भगवान के लिए आसक्ति बहुत गाढ़ी हो जाती है, भगवान में ममत्व बढ़ जाता है, ऐसा लगने लगता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और भगवान भगवान की सेवा अब रोकना भी चाहो तब भी नहीं रुक सकती, भगवान की सेवा भावना प्रज्वलित हो जाती है हृदय में, उसको हम प्रेम कहते हैं। सिंपल। सो ऐसे हर चीज की परिभाषा है, भगवान की परिभाषा भी हमारे सामने। सो हम आज हम भागवत में भगवान की परिभाषा पढ़ रहे हैं पहले श्लोक में। सो कौन है भगवान? ऑफ कोर्स भागवतम शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो व्यासदेव सीधा आंसर दे रहे हैं, घुमा फिरा नहीं रहे, भगवान कौन है। एक मतलब ऐसे एक गुरु है, सदगुरु, सुना ना, सुना सदगुरु, ही इज वेरी फेमस आजकल, मतलब बाहर भी अमेरिका में बहुत फेमस है। तो वो सदगुरु से पूछा भगवान कौन है, इंटरव्यू हो रहा था, मैं देख रहा था ऐसे, तो उसको पहले समझ नहीं आया, फिर तो उसे पूछा कि भगवान कौन है, तो वो हंसने लगा, हंस के कहते भगवान कौन है, भगवान को अगर तुम समझ लोगे कौन है तो भगवान भगवान थोड़े ना रहेंगे। और वो जब लोग बैठे थे, नाइस आंसर, दैट्स क्या हो रहा है, दैट्स अ पॉइंट, खराब हो गया। सो पॉइंट ये है कि लोग अगर हमसे पूछोगे भगवान कौन है व्यासदेव से, तो व्यासदेव सीधा आंसर कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का एक नाम है ओम, सीधा, जो कि वेदों में दिया है और उपनिषदों में भगवान को ओम कह के पुकार रहे हैं सारे ऋषि मुनि और योगीस ज्ञानीस, ओम ओतम प्रोतम इति ओम, जो सब जगह ओत प्रोत है उसको ओम कहते हैं। आपके बाहर भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सब जगह कृष्ण है, उसको ओम कहते हैं। मगर ओम बहुत ही इम्पर्सनल नाम है, नहीं इम्पर्सनल मतलब ऑफिशियल टाइप का नाम है ओम। जैसे मान लीजिए अगर आप पूछो कि ये कौन है तो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, नहीं सो मगर प्राइम मिनिस्टर पहचान नहीं है उस व्यक्ति की, प्राइम मिनिस्टर है बट है कौन ये तो बताओ आप, नाम क्या है। ऐसे भगवान कौन है, ओम, ओके गुड, हर जगह विद्यमान है मगर नाम क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेव है, ओम मतलब भगवान, भगवान मतलब वासुदेव। सो ग्यारहवें स्कंद में भी व्यासदेव लिख रहे हैं क्या है, सर्ववेदमयो हरि धर्म मूलम ही भगवान, कि धर्म का मूल क्या है, भगवान है। सो धर्म को अगर किसने सारा धर्म समझ लिया मगर भगवान को नहीं समझा तो वो अधर्म है, हो सकता है धार्मिक लग सकता है मगर वो अधर्मी है, वो नॉनसेंस है। और भगवान कौन है, सर्ववेदमयो हरि, भगवान कौन है, हरि है। सो वासुदेव, अब ये वासुदेव तो नाम है मगर वासुदेव की परिभाषा क्या है, ये वासुदेव कौन है, ये कृष्ण कौन है। ओम नमो भगवते वासुदेव, वासुदेव मतलब जो वसुदेव के पुत्र हैं। सो मगर ये है कौन, आप बता सकते हैं भगवान कौन है। सो यहां पे बता रहे जन्म आद्यस्यतः, प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पोपट लिखा है इसलिए मैं इस पोपट को पढ़ नहीं रहा, वैसे भी मेरे पास इंग्लिश किताब है, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ने में एक घंटा लग जाएगा, पोपट तो छोड़ो। सो आप घर में आके पढ़ लेना इसका तात्पर्य, मगर मैं प्रभुपाद के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। तो वो आप कह रहे जन्मादस्यतः, भगवान कौन है, भगवान वो है जिससे सब कुछ जन्म लिया, जन्म आदि, जन्म आदि मतलब जिससे सब कुछ जन्म लेता है, स्थिति होती है और प्रलय होती है, भगवान तीनों करते हैं। जन्माद्यस्यता, ये जो सूत्र है ये विधान सूत्र का ऑलमोस्ट पहले दो तीन श्लोकों में आता है। व्यासादेव ने एक और किताब लिखी है विधान सूत्र, उसमें वो परिभाषा दे रहे हैं भगवान की, जन्माद्यस्यता, जिससे सबको जन्म हुआ है वो भगवान है। ओके गुड, तो यहां इस श्लोक में व्यासादेव उस सूत्र की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भागवतम में। भागवतम नेचुरल कमेंट्री है विधान सूत्र की। विधान सूत्र पता है क्या होता है, मतलब पंजाबी में आप कहोगे विधान तो सूत्र, मेरे ख्याल से आप लोग तब समझ आएगा आपको, वरना समझ नहीं आने वाला। सो विधान सूत्र क्या है, व्यासदेव जी ने जैसे भागवतम लिखी है ऐसे वो भी लिखा है, तो उसमें उन्होंने भाई इतना सा सूत्र समझते हो ना, तो बहुत स्मॉल, एक कुछ ही शब्दों में, अल्प शब्दों में। तो भगवान के जन्म आदि अस्यता, उन्होंने कहा भगवान वो है जिससे सब कुछ जन्म होता है। मगर एक्सप्लेनेशन दी वहां पर, सब कुछ जन्म होता है तो सब कुछ क्या है ये तो बता दो, सब कुछ जन्म होता है तो सब कुछ क्या 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 जन्म होता है, कैसे जन्म होता है, समथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। तो उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने भागवतम के पहले श्लोक में दी। तो अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो वेदांत सूत्र के कई सूत्र रिपीट हो रहे हैं भागवतम में, ध्यान से पढ़ेंगे तो वेदांत सूत्र किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने भागवतम पढ़ ली तो उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी भागवतम में है। सो क्या लिख रहे हैं, जन्माद्यस्यता, जिससे सब कुछ जन्म हुआ है, कृष्ण वो है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, नहीं, शिव जी प्रलय करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्योंकि शास्त्र में एक श्लोक आता है कि शिव और ब्रह्मा भी, एक्चुअली ये जो सूत्र है जन्माद्यस्यता, इसकी कमेंट्री में मध्वाचार्य लिख रहे हैं, सीधा पहला श्लोक ही लिखा है उन्होंने कि शिव और ब्रह्मा भी अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो चंडाल बन जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है, कृष्ण के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है, शिव जी और ब्रह्मा जी की, क्योंकि शिव को शिवत्व प्रदान करने वाले कौन है, कृष्ण, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्रदान करने वाले कौन है, कृष्ण, और विष्णु को विष्णुत्व प्रदान करने वाले कौन है, कृष्ण। ऑफकोर्स विष्णु कृष्ण एक ही है, बट स्टिल करोड़ों विष्णु है मगर कृष्ण एक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सब कुछ भगवान से आया है, प्रभुपाद एक्चुअली अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो नेचुरल इच्छा होती नहीं, आसमान देखते हैं तो पापा से पूछते हैं पापा ये तारे कहाँ से आए हैं, हर बच्चा पूछते नहीं पूछता है ये आसमान कहाँ से आया है, सूरज कहाँ से, चंदा कहाँ से आया है, तो नेचुरल हमारे में इच्छा है जानने की संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और साइंटिस्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये संसार अपने आप आया है, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, एक विस्फोट हुआ बिग बैंग और संसार सृष्टि हो गई, और फिर उसके बाद उस सृष्टि में एक और विस्फोट हुआ और जीवन आ गया, और फिर जीवन आगे बढ़ते 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 उसमें एक विस्फोट हुआ और फिर बंदर आ गए और फिर हम आ गए। तो भगवान का है, भगवान है ही नहीं, तो उन्होंने भगवान को उड़ा दिया। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये नॉनसेंस है, व्यासदेव सीधा उसको काट रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी नॉलेज परफेक्ट है कि सृष्टि और हम लोग डायरेक्टली किससे आए हैं, भगवान से, भगवान हमारे पिता है, अहम बीज प्रद पिता, कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सबका पिता हूं, मैंने जो हमारे शरीर में जो स्पार्क है, हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो आत्मा उसी तरह शरीर में रहती है जिस तरह पानी में तेल या हवा में सुगंध, अगर हवा में सुगंध फैल जाए तो आप अलग कर सकते हो सुगंध और हवा को, आप नहीं कर पाओगे कितनी कोशिश कर लो, नहीं कर सकते आप, उसी प्रकार शरीर में आत्मा है, आत्मा और शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, वो हवा में सुगंध की तरह है। वो जो आत्मा है उसका उसके सोर्स है कृष्ण, वो कृष्ण का अंश है, मगर अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर अलग है। साधारण आदमी नहीं कर सकता सुगंध और हवा को अलग, मगर कृष्ण तो कर सकते हैं ना। सो कृष्ण कहना जन्माद्यस्यता अन्य वद तरतश्च विज्ञ स्वराट, भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है कैसे क्रिएट किया, पर्सनली बनाया है या किसी के थ्रू बनवाया है? कह रहे नो, अन्यवत इतरतस, डायरेक्टली भी भगवान ने कुछ बनाया है और इनडायरेक्टली भी बनाया। इतरतस मतलब इनडायरेक्टली, तो भगवान ने सृष्टि की है, खुद से पूरी सृष्टि नहीं की। खुद से भगवान ने किसको जन्म दिया है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार, इन सबको भगवान ने बनाया है। और फिर ये सारी चीजें भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दी, जो पहले इंजीनियर, पहले सिविल इंजीनियर ब्रह्मा जी हैं। किताबों में आना चाहिए, नहीं, पहले सिविल इंजीनियर हमारे, तो ब्रह्मा को दे दिया। अभी देखो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार लो और इसको कंबाइन करके सृष्टि बना दो। जैसे ऐसे एक दुकान वाला पेंटर को कलर दे देता है और फिर वो रंग इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाता, रंग वो नहीं बनाता। सो ऐसे ही भगवान ने सारे तत्व बना दिए और ब्रह्मा जी का ठीक है, अब आप सृष्टि करो, अलग अलग चीजें बना दो, इनको मिला मिलू के। सो इतरतस मतलब इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने क्रिएशन की और थोड़ी खुद भी की है। जो भगवान खुद सृष्टि करते हैं उसको बोलते हैं सर्ग, और जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कराते हैं उसको कहते हैं विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, ये भी भागवतम में आ रहा है, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, पहले दूसरे श्लोक में। सो इतरतस च अर्थेषु, ओके, सृष्टि क्यों हुई है क्वेश्चन यहां तक, बनाई क्यों है भगवान ने, नहीं, दैट्स अ पॉइंट, बनाए क्यों है भाई ये बता दो पहले। तो कुछ लोग कहते हैं क्यों बनाइए, कुछ लोग कहते हैं क्यों बनाइए, कुछ लोग कहते हैं सृष्टि बनाइए हमारे लिए, कहते नहीं है संसार भगवान ने हमारे भोगने के लिए बनाया है, बोलते हैं। अब जाओगे बाहर, क्यों बनाया भगवान ने, तुम्हारे लिए तो बनाया है सब कुछ, इंजॉय करो। ये नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है, नहीं, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे लिए बनाया इसलिए इंजॉय करो। प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की। और भगवान ने सब कुछ के हमारे लिए बनाया। लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, कहते नहीं है, सो पिता अपने बच्चे के लिए तो बनाता है, तो इसलिए एंजॉय करनी चाहिए। मगर ये कंप्लीट नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है। क्यों है ये नॉनसेंस? क्या तो इस आर्ग्यूमेंट का जवाब क्या दोगे, क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ आया, हाँ या नहीं? तो क्या जवाब है इसका?
जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेवा में लगानी
पड़ेगी। जिसकी प्रॉपर्टी है उससे पूछना पड़ेगा क्या करना है। पहले पूछोगे तो सही, करना क्या है इसका? अब वो अपने आप हम सोच लिया, भगवान की प्रॉपर्टी है और हमारे लिए, भैया ये किसने कहा है? तुम्हारे चाचा है भगवान? ये पूछ के आए हो तुम? पूछा किसी ने, अपने आप मान लिया है, नहीं? अगर मैं बोलूं ये पड़ोसी का घर है मेरे लिए, कहेगा भैया क्या है ये? हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी है मगर तुमने मेरे लिए बनाया है ना। कहेगा ये क्या है, तुम्हारे लिए बनाया है? अपने मन से सोच सोच के कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना ली। ये ठीक है, आपको पता है सब कुछ भगवान का ही, आपको पता है, तो भगवान से पूछो ना क्या करना है इसका, खुद से मन से क्यों बना सकते हो आप? तो यहां इसलिए कह रहे च अर्थेशु, अर्थेशु मतलब उनके लिए, अर्थेशु भगवान ने ये संसार बनाया अपने लिए, हमारे लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है। अपने लिए मतलब कि भगवान ने संसार बनाया है कि ये संसार की हर वस्तु भगवान की सेवा में लगे, मेरी सेवा में लगे, भगवान चाहते हैं। और हमसे चाहते हैं कि हमें संसार की चीजें भगवान की सेवा में लगा दें, क्योंकि अपने अपने लिए डिजाइन किया ना भगवान ने, और भगवान ने हमें भी बनाया है अपने लिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने प्रपोर्ट में कि बाय द विल ऑफ कृष्णा वे डिजाइंड, डिजाइंड वर्ड यूज कर रहे हैं, भगवान के संकल्प से हमारी सृष्टि हुई है। क्यों हुई है? कि जिससे हम भगवान की सेवा करें। अगर भगवान चाहते तो हम जैसे लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक होल में भेज देते। ब्लैक होल पता है? पता है ना आपको ब्लैक होल? इनको नहीं पता होगा, माता जी इसको कैसे बताया ब्लैक होल। चूल्हा पता है? चूल्हा काला, उसमें डाल दे। और कैसे समझाए? सर कुछ भी नहीं कर पाते आप, सो ब्लैक होल, ब्लैक होल ऐसी जगह जहां से वापस कभी नहीं आ सकते, आकाश में होता है, वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, वह रोशनी चली गई वो भी वापस नहीं आएगी। सो वहां पर डाल देते हैं, आप कभी नहीं आते, बस खत्म हो जाते। क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दे दिया, मन दे दी, बुद्धि दे दी, हमें क्यों डिजाइन किया है? इसलिए डिजाइन किया कि हम उनकी सेवा कर पाए। तो इसलिए अच्छा अर्थेशु, सब कुछ भगवान के लिए बना है, ये हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, हम भूलते रहते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए, हमें लगता है फिर हमारे लिए है। सो अगर आप याद नहीं दिलाओगे अपने आप को, तो धीरे धीरे भगवान की चीज ही आप भोगना शुरू कर दोगे। और भगवान की चीज, किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी अगर आप लोगे तो क्या बोलेंगे? चोरी कहेंगे ना। तो इसलिए ईशा उपनिषद में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति चोर होते हैं, और चोर को क्या मिलती है? सजा मिलती है। नहीं, इसलिए बटाला का हर व्यक्ति चोर है, ये समझ लो आप, एक्सेप्ट हम लोग वैष्णव डिवोटीज, हर आदमी चोर है। इसलिए हर व्यक्ति नर्क में जाएगा, चाहे वो कितनी अच्छा क्यों ना हो, कितने बड़ी दान, कितने बड़े दानी क्यों ना हो, कितने बड़ा सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब कितने बड़ा पुण्यवान क्यों ना हो, वो फिर भी नर जाएगा, क्योंकि उसने चोरी की है भगवान की। यू सी, एक डिफरेंस है, लोगों को समझ नहीं आएगा। लोग तो कहेंगे देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग क्यों जाएंगे, उन्होंने भगवान की चीज ली है, भगवान से बिना पूछे। नहीं, हम किसी की चीज किसी से बिना पूछे लेंगे तो वही तो चोरी होती है, आपने ले ली। तो शास्त्रों में कह रहे हैं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए। सो मगर भागवतम फिर कह रही, फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर भगवान के लिए सब कुछ बना, भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान को क्यों चाहिए सब? नहीं, भगवान ने क्यों बनाया है सब अपने लिए? दैट्स अ क्वेश्चन, क्यों बनाया हमें अपने लिए, क्यों बनाया संसार अपने लिए भगवान ने, जरूरत ही क्या है? भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, नहीं तो इस संसार की सृष्टि क्यों की अपने लिए? तो उसका आंसर कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, कृष्णा स्वतंत्र है, कृष्णा राजा की तरह है। तो राजा प्रजा क्यों, राजा प्रजा, राजा बड़े बड़े महल बनाता है, घर बनाता है, क्यों बनाता है? प्रजा के लिए बनाता है, नहीं कि प्रजा सुख और शांति से रहे। और प्रजा भी राजा, राजा प्रजा को अपना ही मानता है नहीं, राजा प्रजा को अपना ही मानता है। तो प्रजा के लिए बनाने का मतलब है घर अपने लिए बना रहे, समझ गए नहीं समझ गए? अगर माता पिता अपने बेटे के लिए घर बनाए तो किसके लिए बना रहे हैं? अगर कोई बोले कि भी कि किसका घर है तो क्या बोलेंगे? हमारा घर है, मगर एक्चुअली उनका घर नहीं है, वो किसके लिए बना रहे हैं? अपने बेटे के लिए बना रहे हैं, मगर पब्लिक में कहेंगे कि हमारा ही घर है, क्योंकि पुत्र और बेटे में कोई एक ही संबंध है ना। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने सृष्टि अपने लिए बनाई है। अगर पब्लिक में आंसर दोगे तो ये आंसर है कि भगवान ने सृष्टि क्यों की है? अपने लिए। अगर उपनिषदों में, वेदों में देखोगे, ओके यस, मगर अगर आप ध्यान से भागवत पढ़ोगे तो समझ आएगा कि भगवान ने सृष्टि किसके लिए की है? हम लोगों के लिए, हम जो भगवान के अंश हैं, हम लोगों के लिए की है, कि हम सृष्टि की चीजें इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध हो जाए दोबारा। हम एक चांस दे रहे हैं भगवान कि ठीक है, इन सारी चीजों को तुम मेरी सेवा में लगाओ। जब माता पिता अपने पुत्र के लिए घर बनाते हैं तो उनकी आशा क्या होती है? कि वो पुत्र आराम से रह के अपने माता पिता की सेवा करेंगे, थोड़े ना गेट आउट निकाल देंगे, आशा तो ये होती है ना। तो भगवान ने हमारे लिए सृष्टि बना दी, और इस आशा से कि इस संसार की सृष्टि की चीजें हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, वो अच्छा पुत्र है। गंदे गंदे बेटे तो होते हैं कि मम्मी आपने घर बनाया, फिर उनको गेट आउट कर देते हैं, वो होते हैं। सो ठीक है, आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है भगवान ने, आप तुम पुत्र हो ना सर भगवान के, भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया, गुड, मगर फिर तुम्हारी सेवा क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और माता पिता की सेवा करना, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। सो अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रभुपाद अपने पॉकेट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र है, हम सब परतंत्र है, स्वराट मतलब राजा है, हम सब उनकी प्रजा है। कृष्णा किसी पे भी निर्भर नहीं होते, हम निर्भर हैं, नहीं हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं बोल सकते, कोई बोल सकता है? एटलीस्ट आपको खाना तो खाना पड़ रहा है, हवा तो लेनी पड़ रही है, आप हवा पे डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट समझते हो ना, डिपेंडेंट, अब हवा पे तो निर्भर हो ना जीने के लिए, खाने पे निर्भर हो, पानी पे निर्भर हो, प्रकृति पे निर्भर है, और पेड़ पौधे किस पे निर्भर है, सूरज पे निर्भर है, और सूरज किस पे निर्भर है, सूरज की रोशनी भगवान पर, और भगवान किस पे निर्भर है, किसी पे नहीं, दैट्स ऑल, किसी पे निर्भर नहीं है, कृष्णा स्वतंत्र है, इसलिए यहां पे कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, भगवान से सब कुछ जन्म लेता है, भगवान सब कुछ बनाते हैं, मगर भगवान को कोई नहीं बनाता। ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान ने किसको बनाया, ये पूछते नहीं पूछते किसने बनाया, तो इसका आंसर है भगवान को किसी ने बनाया, भगवान ने खुद ने अपने आप को बनाया है और खुद चल रहे हैं। जैसे ट्रेन का इंजन, इंजन क्या करता है, इंजन सारे डब्बों को खींचता है, मगर इंजन को कौन खींचता है, कोई नहीं, तो ऐसे भगवान है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ पे भी तो एग्जाम्पल है आपके पास। सो तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे, और भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकट किया, भक्ति का और प्रेम का और सृष्टि बनाने का। और आदि कवे होते हैं मतलब आदि कवि हैं, आदि मतलब ओरिजिनल, कवि मतलब एक्सपर्ट, कृष्णा ओरिजिनल एक्सपर्ट व्यक्ति है, भगवान से ज्यादा एक्सपर्ट कुछ नहीं है। कृष्णा हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ के लिए इस तरह प्लानिंग करेंगे कि हमें पता भी नहीं लगेगा और हम शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी प्लानिंग होगी हमारे लिए। हो सकता है हमें समझ नहीं आ रही हो भगवान की क्या प्लानिंग है, मगर अगर आप भगवान की भक्ति में लगे रहोगे और भगवान के प्लान पे संशय नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है भगवान प्लानिंग करते हैं तो हमें लगता है ये क्या क्या कर रहे हैं भगवान मेरे साथ, कभी कभी ऐसा लगता है, नहीं हमें समझ नहीं आता कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। और मगर अगर आप विश्वास रखोगे कि भगवान की प्लानिंग मेरे लिए बेस्ट है तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप शुद्ध हो जाओगे, सिंपल। मगर आपने भगवान से पूछ लिया कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत दुख आ रहा है, आपने पूछ लिया भगवान मैं तो आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भगवान बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपने भगवान को हर्ट कर दिया, क्योंकि आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है नहीं। ये पूछना कि क्यों कर रहे हैं ये विश्वास में कमी है, क्योंकि हम भक्तों को विश्वास है कि भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे बेस्ट के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्लानिंग में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी खोट नहीं है। सो नो प्रॉब्लम, हम लोग भगवान की भक्ति फिर भी करते रहे, चाहे कोई भी प्लान है, भगवान का प्लान, भगवान हमारा जीवन चला रहे हैं, चलते रहो, बस भक्तों के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मनुष्य का मन तो थोड़ा बहुत विचलित होता ही है, नहीं किसी भी स्थिति में, मनुष्य है ना हम लोग, कोई देवी का थोड़े ना, ये महान थोड़े ना कि कुछ भी हो जाएगा लाइफ में हम लोग विचलित नहीं होंगे, विचलित जरूर होते हैं, मगर विचलित होने का मतलब नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें, भक्ति करते रहो करते रहो, भगवान बहुत खुश होंगे उससे, क्योंकि भगवान को फिर लगेगा यस ये जो मेरा भक्त है इसको पता है कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूं इसके लिए वो इसके भले के लिए, ही अंडरस्टैंड्स दैट। सो इसलिए अभिज्ञ तेना ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान बहुत एक्सपर्ट है, इसको पता है कि मैं एक्सपर्ट हूं और मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी शुद्ध कर देता हूं। सम्यक व्यवस्था ही साहब कल पढ़ रहे श्लोक, बहुत ही जल्दी मेरे भक्त शुद्ध हो जाते हैं। मेरे भक्त कृष्णा कह रहे हैं कि अगर वो गिर भी जाए, अगर गलत चीजें पढ़ भी जाए, गलत सोच भी लें, मगर क्योंकि वो मेरे भक्तों के साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे तो धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी तो मैं कल कह रहा था कि अगर कुछ भी छूट जाए, एक बार को अगर सारी चीजें छूट जाए, भक्तों का संग मत छोड़ो, बस दैट्स ऑल। आदि कवे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के थ्रू काम करते हैं, एक्सपर्ट है ना, मगर डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली भी करते हैं परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में परमात्मा के रूप में आपको गाइड करेंगे, मगर ज्यादा भगवान अपने भक्तों के थ्रू गाइड करते हैं, अपने भक्तों के थ्रू आपको, जैसे कुम्हार नहीं होता घड़ा बनाते हैं, सो उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन को, जीवन का घड़ा बनाते हैं धीरे 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 धीरे, और कैसे बनाते हैं? भगवान के हाथ कौन है? भगवान के हाथ भक्त है। भक्त के थ्रू हमारे हृदय और मन और आत्मा को ये क्या कहते हैं, घड़े बनाने को क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं काटते हैं, घड़ा बनाते हैं, अपने हाथों के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू डिजाइन करते हैं हमारा, हमारी, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध करते हैं, यही कृष्ण है। सो अपने भक्तों के थ्रू काम करते हैं भगवान और हमें प्योर बना देते हैं। भगवान की प्लानिंग है, ये भगवान एक्सपर्ट है। तो हो सकता है भगवान किसी भक्त को बोले कि इसको तंग करो। हाँ तंग हो गया, कहोगे मुझे क्यों तंग कर रहा है भाई, ये ना लेना ना देना, पीछे पड़ गया, ऐसा होता है, नहीं होता है। इसका दिमाग खराब हो गया। एक्चुअली उसका दिमाग खराब नहीं हुआ, परमात्मा उसके अंदर से बैठ के उसको प्रेरणा दे रहे, चलो तंग करो इसको, क्योंकि भगवान एक्सपर्ट है ना। धीरे धीरे आपको, आपको अगर आप बात नहीं मान रहे होगे तो इस तरह से भगवान दिखा देंगे कि क्या कमी है तुम्हारे में, आप तंग हो गए, ये हो गए, तो आपको समझ आएगा यार ये तो अभी तो मैं भक्ति में बढ़ा ही नहीं आगे, मैं इतनी छोटी छोटी चीजों में तंग हो रहा हूं। तो फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर कहोगे मुझे भक्ति करनी चाहिए ज्यादा, नहीं। सो इस तरह से भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं अपने डिवोटीज के लिए कि जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ जाए। बस हमें एक काम करना है, हमें बस विश्वास रखना है कि कुछ भी भगवान मेरे साथ कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। ये विश्वास रखना बहुत मुश्किल है बस, नहीं। इसके लिए भक्तों का साथ नहीं होगा तो फिर विश्वास टूट जाएगा वो। भक्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त फिर से विश्वास उत्साह ले आते हैं, विश्वास दे देते हैं। कुछ लोग अपने आप कर लेते हैं, कुछ लोग जो एडवांस्ड होते हैं उनको फिर ज्यादा एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली अपने आप को उत्साहित कर लेते हैं, नहीं, वो आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि कृष्णा मेरे साथ है और कृष्णा मेरे लिए सोच रहे और मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो कन्विंस्ड है, वो कन्विंस्ड है, कृष्णा कंप्लीट कंट्रोल में है, समझे। अब आदि कवि अभिज्ञ स्वराट, भगवान राजा है, राजा कंप्लीट कंट्रोल में होता है, नहीं होता है, राजा पूरे पूरे कंट्रोल में प्रजा के है, नहीं। अब कोई मान लीजिए प्रजा में चोरी कर ले तो राजा कंट्रोल में सैनिक को भेज के पकड़वा के जेल में डाल देगा। सो भगवान पूरे, उसको पता है पूरे कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ, कुछ अनकंट्रोल नहीं चल रहा कि उसने मार दिया, क्यों मार दिया भैया, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है क्यों मारा है। किसी ने कुछ आपको, किसी ने आपकी कुछ प्रशंसा कर दी, उसके पीछे भी कुछ कारण है, ऐसे नहीं हुई पिछले दिनों में कुछ किया होगा उसके, उसके इसलिए मिल रहा है। वो सब कुछ लॉज में चल रहा है। आदि कवि भगवान एक्सपर्ट है, भगवान ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब कुछ कंट्रोल में है भगवान के। तो बस डिवोटी अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं होती उसको, जब भगवान कंट्रोल में तो क्या टेंशन है नहीं। एक बच्चे को कोई टेंशन होती है, खेलता रहेगा अपना, क्योंकि उसको पता है मम्मी पापा मेरे, उसमें मतलब उसको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा कंट्रोल में है, कंट्रोल होता नहीं है उनका मम्मी पापा का, ऐसा लगता है कि मम्मी पापा सब कुछ ठीक कर देंगे, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ फॉल्स इल्यूजन। तो वो खुश रहता है, मतलब बच्चा मतलब झूठ मूठ, मतलब झूठ में भी रह के खुश रहता है, उसके पापा मम्मी पापा का कंट्रोल में नहीं है, बट उसको लगता है मम्मी पापा कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो कर देंगे। तो जब ऐसा सोचने मात्र से कि मेरे मदर फादर कंट्रोल में है और खुश रह सकते हो, तो भगवान तो असली में कंट्रोल में है, इसलिए भक्त को कभी भी कोई टेंशन नहीं होती। प्रभुपाद ने बोला है कि अगर किसी भक्त को टेंशन होती है तो उसकी भक्ति ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, वो ज्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि टेंशन होने की प्रॉब्लम पॉइंट ही क्या है। भ्रम भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति, गीता का, गीता की नॉलेज है। तो उस नॉलेज को अपने हृदय में लेने की कोशिश करो, सिर्फ किताब में ना रह जाए, पेपर में, ये इंक में, इसको अपने हृदय में उतारो धीरे धीरे। और उन लोगों का बहुत सौभाग्य है जिन लोगों के जीवन में मुश्किलें आती हैं, जिनके जीवन में दुख आते हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, तो उसमें इस ज्ञान को अपनी आत्मा में लेने का अवसर है। और अगर आपने उन मुश्किलों में भक्ति कर गए और फिर भी आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि भगवान की पूर्ण कृपा है आप पे, और भगवान ने, और उस ज्ञान को धीरे धीरे आपने अनुभव कर लिया, यू आर रियलाइजिंग दैट नॉलेज, नहीं। अगर कोई इंसिडेंस ही नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा, है नहीं? अगर आपको बोलूं कि डरना नहीं चाहिए, भक्त क्या होता है? निर्भय होता है। वो कहे हाँ मैं तो निर्भय हूं, तो ठीक है गुड। फिर एक दिन आप जा रहे हो, आपके सामने शेर आ गए, तो क्या होगा? आपकी कंठी माला पहले तो हाथ से गिर जाएगी। हरे कृष्णा भूल लोगे सब कुछ, और फिर हरे कृष्णा नहीं लिखेगा, मम्मी कब कहाँ है भाई, बचाओ कोई बचाओ, वो कुछ नहीं होगा। तब आपको समझ आएगा कि डर क्या होता है। तो जब जब कोई परिस्थिति बनती है ना जीवन में, तब समझ आती है चीजें। बिना परिस्थिति के ज्ञान फलित नहीं होता। मतलब आप थ्योरी क्लास करते हो मगर समझ नहीं आता थ्योरी में, फिर लैब में जाते हो प्रैक्टिकल में, तब समझ आता है कि भी कैसे अप्लाई करना है। सो जब तक, तो कृष्णा कह रहे हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होता, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर भी दुखी नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी उसको। वो हमें समझ ही नहीं आएगा जब तक दुख नहीं आएगी, वो परिस्थिति नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं, आपको अनुभव ही नहीं होगा उस चीज का, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्या है, क्या कह रहे हैं। सो भागवतम, मतलब मैंने घर इसलिए छोड़ा था अपना, क्योंकि मैं भागवतम पढ़ता था पहले बहुत, मैं तो काफी भागवतम पढ़ी पढ़ी, तो भागवतम में लिखा था कि भक्त पूर्ण शरणागत होते हैं, भगवान जरूर रक्षा करते हैं उसकी। ध्रुव महाराज जंगल चले गए, प्रहलाद महाराज ने सब कुछ नहीं, उनके कितनी मुश्किलें आई फिर भी कुछ नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा की। तो मैंने कहा यार घर में बैठ के तो पता नहीं लगेगा ये कि भगवान रक्षा कैसे करते हैं, वो कैसे पता लगेगा, घर में तो सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पैसे भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो घर छोड़ के पता लगेगा कि भगवान रक्षा कैसे करते हैं। ऐसे तो समझ नहीं, पूरी तरह समझ नहीं आएगा, आ सकता है मगर 100% नहीं आएगा। सो मैंने कहा भैया 100% अनुभव करना है तो घर छोड़ना ही पड़ेगा, तब पता लगेगा कि खाना कहाँ से आएगा, चश्मा कहाँ से आएगा, चश्मा कैसे कैसे खरीदेंगे, खाना तो फिर भी भीख लोगों को मांगोगे, चश्मा कैसे भीख मांगोगे। वो तो पैसे से मिलेगा, तो खाने की टेंशन नहीं थी, यानी चश्मा कैसे मिलेगा यार, वो तो फिर दिखाई भी नहीं देगा। और सो मैंने कहा तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, वरना भागवत अब समझ ही नहीं आएगी। वरना ध्रुव महाराज के बारे में बोलते रहेंगे हम, ध्रुव महाराज इतने महान थे, जंगल चले गए भैया, अब कोई मतलब ध्रुव महाराज से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि सिचुएशन में नहीं गए ना हम लोग। तो फिर इसलिए मैंने घर छोड़ा, चलो देखते हैं क्या होता है, वापस तो कभी भी आ सकते हैं घर, कौन मना कर रहा है। कोई मना थोड़ी ना करेंगे, ट्राई कर लेते हैं, उसमें क्या है, कुछ किताब तो समझ आ जाएगी। सो जब घर छोड़ा तब समझ आया भागवतम क्या होती है और ध्रुव महाराज क्या थे। इट्स नॉट ईजी टू डू जो ध्रुव महाराज ने किया, जंगल में जाके बिना डरे बस भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब जंगल में ठंड भी तो हुई होगी, क्यों हमें तो ठंड लग गई, लोगों को ठंड लग गई, मुझे भी ठंड लग गई थी, बीमार पड़ गए हम। अब ध्रुव महाराज छोटे बच्चे, पता नहीं वो कैसे रहे होंगे ठंड में बारिश में, नहीं कैसे, मतलब सोचना बड़ा मुश्किल है, और फिर भी भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा लेते रहे। ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शेर की आवाज आ रही है, जंगल में सांप है, हाउ डू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए तो आपको घर छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा ध्रुव महाराज कितने महान थे। ऐसे नहीं पता लगेगा घर में एसी में बैठ के, वो समझ पूरी तरह नहीं आएगा। आप थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हो, पूरी तरह नहीं कर सकते, बट मैं ये नहीं कह रहा आप सबको घर छोड़ने की जरूरत है, बट मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि कुछ भी ज्ञान को अनुभव करने के लिए परिस्थिति की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपको भागवतम में ये समझना है कि भक्त दुख और सुख में उसका मन समान रहता है, तो दुख तो आने चाहिए ना, तभी तो टेस्ट होगा कि आपका मन समान है या नहीं, तभी आपको समझ आएगा समान कहने का मतलब क्या होता है। इसलिए भगवान दुख देते हैं, देख रहे हो भगवान की प्लानिंग, कि गीता समझ आने लगे तब कहोगे अरे गीता में कहा है, अरे मेरा मन तो विचलित हो रहा है, मैं रेडी नहीं हूं। फिर प्रैक्टिस करोगे फिर दुख आएगा, फिर आपका मन विचलित होगा, फिर आप कहोगे अभी रेडी नहीं हूं, अभी मुझे समझ नहीं आया। फिर आप प्रैक्टिस करोगे भक्ति, फिर दुख आएगा, फिर एक दिन आपके मन को कुछ नहीं होगा, आप कहोगे आप समझ आ गया मुझे कि दुख और सुख में मन समानता क्या होती है। सो कृष्णा बहुत एक्सपर्ट है, आदि कवि मुयंती यत सूर्य, मगर भगवान की प्लानिंग मुयंती मतलब कंफ्यूजिंग, सूर्या मतलब देवता, भगवान की प्लानिंग देवता भी नहीं समझ पाते, हम जैसे मनुष्य क्या समझेंगे। सो भगवान की प्लानिंग समझने की कोशिश मत करो, मगर ये विश्वास रखो कि भगवान की प्लानिंग बेस्ट है बस। मगर ये भगवान से प्रार्थना करो कि कृष्णा आप मुझे 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 समझा दीजिए कि आपने कि आप मुझे बताइए कि आप क्या समझाना चाहते हैं अपनी इस प्लानिंग से। भगवान ने कुछ प्लानिंग की है ना, मैं उसको इंडिकेशन कुछ मैसेज देने के लिए, क्या मैसेज है आपका ये मुझे समझा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपकी प्लानिंग पे, कोई मुझे कंप्लेंट नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई एम रेडी। मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि आप मुझे मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मम्मी थप्पड़ मारती है तो बच्चा समझना चाहता है कि मम्मी ने थप्पड़ क्यों मारा। उसको पता है मम्मी चलो अच्छी है, मेरे भले के लिए कर रही है, मगर आपने क्यों मारा कि जिससे मैं अपनी गलती सुधार लूं। तो भक्त डिवोटी एटलीस्ट ये प्रे करता है, कृष्णा प्लीज मुझे समझा दीजिए, मुझे मुझे गाइड कीजिए कि मुझे आपकी प्लानिंग समझ आ जाए कि जिससे मैं अपने जीवन में जो मेरे दोष हैं वो हटा सकूं। तो कृष्णा गाइड करेंगे। मुयंति यत् सूर्य, देवी देवता भी कंफ्यूज हैं। तेजो बारी मृदा यथा अभिनिमय उत्तर, प्रभुपद अपने पॉपर्ट में लिख रहे हैं कि ये सृष्टि जो है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार तेजो बारी मृदा यथा अभिनिमय, जैसे आग में कभी कभी पानी दिखाई देता है। आप देखो जब बिल्डिंग में आग लगती है ना तो फायर फाइटर्स कभी कभी पानी नजर आता है, या पानी में भूमि नजर आती है, ये तो देखा होगा मिराज, या डेजर्ट में पानी नजर आता है, ये तो पता होगा मृत कृष्णा। एक्चुअली रोड में भी पानी नजर आता है, अगर आप स्ट्रीट पे कभी गर्मी में चलाओगे ना गाड़ी तो पानी नजर आएगा दूर से। सो इस तरह से ये सारी चीजें इल्यूजन है, नहीं ना वहां पानी है ना जमीन है ना आ गए कुछ भी नहीं है फिर भी नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं माया। तो ये संसार ऐसा ही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सृष्टि की है भगवान ने, क्या है भगवान के बारे में बता दिया, सृष्टि क्या है, क्या सृष्टि की है। तो व्यासदेव कह रहे हैं सृष्टि माया है। सो ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर थोड़े टाइम के लिए, और रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत की परछाई है सृष्टि। जैसे पानी में भूमि दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि कहीं भूमि होती है उसकी परछाई पड़ रही होती है वहां पानी में, इसलिए दिखाई देती है दूर से। सो परछाई है संसार, है शैडो है, सब्सटेंस नहीं है। तेजो बारी मृदा में था अत्र त्रिसर्गो मृषा धाम न सोएद सदा, भगवान कहाँ रहते हैं, अब उन्होंने बता दिया भगवान कौन है, राजा की तरह सब कुछ सृष्टि करते हैं, कैसे करते हैं ये भी बता दिया, और हमने ये बता दिया कि सृष्टि क्या है। अब पूछ रहे हैं भगवान रहते कहाँ हैं, धाम ना सोए ना सदा, भगवान सदैव अपने अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ गोलोक, वो जो बाहर चाट बना है गोलोक में रहते हैं। धाम ना सोए ना सदा निरस्त कुहुकम, भगवान के धाम में कोई भी माया नहीं है। कुहुकम मतलब माया, निरस्त मतलब नहीं, भगवान के धाम में कोई इल्यूजन नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, केवल रस है, केवल आनंद है वो भगवान का धाम। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य पे मैं ध्यान लगाता हूँ, धीमहि मतलब ध्यान लगाता हूँ। ये भागवतम का पहला श्लोक है जो प्रभुपाद प्रॉपर में लिख रहे हैं। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की, क्या कुछ पूछना कुछ कहना, क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। वैसे प्रभुपाद एक पॉइंट लिख रहे हैं, और प्रॉपर्ट में प्रभुपाद पॉइंट लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम व्यासादेव ने लिखी है, और व्यासादेव ने क्यों लिखी है, क्योंकि जितने भी शास्त्र लिखे व्यासादेव ने सारे शास्त्रों की रचना की है, संकलन किया है, मगर जितने भी शास्त्र की संकलन किया है उसको लिख के व्यासादेव बहुत दुखी थे, बोर थे, कहते अभी भी मतलब एक बेस्ट बुक नहीं आई, नहीं सारे भी कुछ लिखते बेस्ट नहीं है। तो व्यासादेव ने बेस्ट बुक लिखने लिखी और उसका नाम था भागवतम। तो भागवतम ऐसी किताब है कि भागवतम वैसे किसके लिए है, परमा हमसों के लिए है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि भगवान कौन है, ये महान लोगों के लिए नहीं, ऑर्डिनरी आदमियों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर हमें दी जा रही है। और ये इस किताब को पढ़ के परमहंस और महान महान महामुनि कृते महान महान लोगों को आनंद आता है। मगर भागवतम व्यासदेव ने ऐसे लिखी है कि इसे हम जैसे लोग भी वही आनंद अनुभव कर सकते हैं जो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जो महामुनि कर रहे हैं। नहीं, कितना डिटेल्स में लिखा है नहीं भगवान की परिभाषा, और पढ़ के कितना अच्छा लगता है हमें। इमीडिएटली उस प्लेटफॉर्म पे लिया व्यासदेव भागवतम के द्वारा। अगर भागवतम सही से पढ़ोगे तो आप इमीडिएटली महान लोगों के परमहंस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, क्योंकि लॉजिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर करने के लिए ऋषि मुनियों को करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तपस्या करके फिर क्लियर हो रहा है, वो व्यासदेव ने सबको लिख दिया, चलोगे करोड़ों साल की तपस्या बोल के पढ़ लो, क्लियर कर लो और टेस्ट करो भागवतम। वही आनंद हमें भागवतम पढ़ने से मिल जाएगा जो ऋषि मुनियों को करोड़ों साल तपस्या करने से मिलता है, कि ब्यूटी है भागवतम की। तो इसलिए भागवतम हम लोग भागवतम विल ग्रेजुअली एलिवेट द अनबायस्ड रीडर टू द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंस। तो क्या लिख रहे हैं, भागवतम पढ़ने से आप टॉप मोस्ट डिवोटी बन सकते हो भगवान का, टॉप मोस्ट। केवल भागवतम बननी है, मध्यस्थ भागवत पुराण, लाइफ के सेंटर पे भागवत रखो, आपके लिए परफेक्ट है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।